हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 16 एंड 17। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगणा रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्ता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 जिसका शीर्षक है भक्ति योग, श्लोक संख्या 16। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र और स्वादिष्ट शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मत्भक्तः समीप्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मत्भक्तः समीप्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मत्भक्तः समीप्रियः। अपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समीप्रियः। शब्दार्थ अनअपेक्षा अर्थात इच्छा रहित, शुचि यानी शुद्ध, दक्ष यानी पटु या एक्सपर्ट, उदासीन चिंता से मुक्त, गतव्यथ सारे कष्टों से मुक्त, सर्वारंभ यानी समस्त प्रयत्नों का परित्याग, परित्याग करने वाला, योम समय भक्त समय प्रिय, यो मद भक्त समय प्रिय, यो मन जो, मद मनी मेरा, भक्त यानी भक्त, स वह मे प्रिय अतिशय मुझे अतिशय प्रिय है। अनुवाद, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित और किसी फल के लिए प्रयत्न नहीं करता, मुझे अतिशय प्रिय है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इच्छा, श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में दो बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनवाता। श्रील प्रभुपाद की इच्छा हो। मोकं कुरु तु वाचालं पंघुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अध्याय 12 भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर किस प्रकार से हम भक्ति के द्वारा भगवान के साथ अपने योग का निर्माण कर सकते हैं उसकी विधि बता रहे हैं। पहले तो भगवान ने बता दिया कि देखो अर्जुन, क्योंकि तुम साकार हो तो निराकार की भक्ति करना तुम्हारे लिए कष्टदायक होगा, इसीलिए आसन क्या है, आप मेरे साकार रूप में अपने मन को लगाओ और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अति शीघ्र तुम्हें इस मृत्यु संसार सागर से तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। जो अपने मन को, अपने चित्त को मुझ में आस्थित कर देते हैं उनको तो समय नहीं लगता है मुझे प्राप्त करने के लिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के स्तर बताए कि पहले सबसे पहला स्तर, सबसे बुलंद तरीन जो टॉप मोस्ट है वो क्या है, मई एव मन आदर्शो, मई बुद्धि निवेश है, मन और बुद्धि को भगवान में लगाना। लेकिन यदि मन और बुद्धि भगवान में नहीं लग रहे हैं तो क्या करना है, अभ्यास योग्य न कौन थे, अभ्यास करना है, नियम का पालन करना है, शास्त्रों को अध्ययन करना है, जप करना है। और अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते तो भगवान के लिए कार्य करना है। अगर भगवान के लिए कार्य नहीं कर सकते तो जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए उनकी सहायता करनी है। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसके फल को भगवान को समर्पित करना है। और भगवान ने बता दिया कि ज्ञान श्रेय हुई ज्ञानम अभ्यासम, ज्ञान का अभ्यास श्रेय है और ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से शांति प्राप्त होती है। इतना बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अब उन व्यक्तियों के विषय में बताने के, उन भक्तों के विषय में बताना प्रारंभ किया है जिनसे कि भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और श्लोक नंबर 13 में भगवान ने बताया, अद्वेष्ट सर्वभूतानां, किसी से द्वेष नहीं करता। वास्तव में भक्तों, द्वेष करने के लिए भी उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, हृदय में जगह देनी पड़ती है, उसके लिए सोचना पड़ता है। लेकिन जो भक्त होता है उसके हृदय में इतनी जगह ही नहीं होती कि वो किसी से द्वेष करे, क्योंकि वो द्वेष जिस समय कर रहा होता है उस समय वो पूरा जो अपना बुद्धि और मन जो है ना उसके विषय में सोचने में लगाता है। लेकिन वो मन और बुद्धि तो भक्त ने भगवान को समर्पित कर दी होती है, तो फिर वो किसी और से द्वेष कैसे कर सकता है। इसे भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, जो सबका निस्वार्थ कृपामय मित्र है, जिसके हृदय में सबके लिए करुणा है, निर्ममो निरहंकार, किसी के लिए भी ममता नहीं है, अहंकार नहीं है, वो करुणा तो रखता है लेकिन किसी में आसक्ति नहीं रखता, सम दुख सुख क्षमी, दुख और सुख उसके जैसे उसके सामने एक बराबर है, वो बहुत क्षमावान है, संतुष्ट है, उसके पास जो कुछ है वो जानता है ये मेरी कृष्ण की कृपा है, तो संतुष्ट है, उद्विग्न नहीं होता, सदैव संतुष्ट सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ होता है कि जो भी कृष्ण करता है वो अवश्य मेरे कल्याण के लिए करता है। क्यों, मैं अर्पित मनोबुद्धि, उसने अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर दिया है, यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। आगे भगवान ने कहा, यस्मान नो द्विजते लोको, जिसके द्वारा कोई भी विचलित नहीं होता, मतलब वो किसी को विचलित नहीं करता, और लोकान नो द्विजते चाह, और जो दूसरों के किसी कार्य से स्वयं भी विचलित नहीं होता, अपने कार्य से दूसरों को नहीं करता, दूसरों के कार्यों से होता ही नहीं है, हर्षामर्ष भयोद्वैक है, हर्ष हो चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, भय हो चाहे चिंता हो, सबसे मुक्त है, मुक्त हो मुक्त है, बिल्कुल जो भी है हो रहा है उससे उसको कोई इंटरनली जो है ना वो इफेक्ट नहीं पड़ता है। हृदय में अभी खुशी का माहौल हो, कुछ मिल जाता है, संसार में देखते किसी को कुछ मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ खो जाता है तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो ये सबसे वो मुक्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यह सच में प्रिय है, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। और आज भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 16 में बता रहे हैं, पहले कह रहे हैं अनपेक्षा, अनपेक्षा मतलब इच्छा नहीं रहती। यहाँ संसार में हम देखें ज्यादातर लोग इच्छाओं पर जीते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, इतनी इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं पूरी करते 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 वाकई में दम निकल जाता है, पर इच्छाएं पूरी नहीं होती। परंतु जो भक्त इच्छा रहित है, इच्छा नहीं करता कि मुझे इतना धन मिलना चाहिए, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए, अनपेक्षा किसी भी वस्तु के लिए उपेक्षा नहीं करता। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं है कि अगर कोई भक्त को धन देता है तो उससे धन लेता नहीं है, यानी कि भक्त अगर भक्त को कोई सेवा के लिए धन देता है, डोनेशन देता है, तो वो ले लेता है और उसको भगवान की सेवा में लगाता है, परंतु वो धन प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा संघर्ष, कुछ लोग है ना ऐसे भक्ति की आड़ लेकर वो बोलते हैं मैं ये काम करूं तो मुझे ज्यादा धन मिलेगा, फिर मैं सेवा में लगाऊंगा, ये काम करूं, ऐसा नहीं। वो अपनी भक्ति को इंक्रीज करे, अपनी भक्ति जो है वो इतना अच्छे तरीके से करे, फिर धन किधर जाएगा? लक्ष्मी तो नारायण की सेविका है ना, जहाँ पर नारायण को सेवा की आवश्यकता होगी लक्ष्मी महारानी खुद ब खुद आगे आ जाएगी। तो भक्त को धन अर्जित करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वतः उसके लिए प्रबंध कर लेंगे। अगर उसकी भक्ति में आवश्यकता होगी तो खुद ब खुद प्रबंध करेंगे भगवान, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल, क्योंकि ये मनुष्य देह धन अर्जित करने के लिए थोड़े मिला है। शास्त्र कहता है यस्य हेतु प्रियते को विदो न लभ्यते यत् भ्रमता उपर्यत तल्लभ्यते दुख वदन्यत सुख कालीन सर्वत्र गभीर रहंसा। ये जो मनुष्य देह है वो उस हेतु को प्राप्त करने के लिए मिला है जो दूसरे किसी योनि में प्राप्त नहीं होता, दूसरे किसी लोक में प्राप्त न लभ्यते भ्रमताम उपर्यद ऊपर के लोकों में या नीचे के लोकों में भ्रमण करते हुए वो नहीं मिलता है। फिर क्यों कहाँ मिलता है? यहाँ पृथ्वी पर यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो हेतु प्राप्त होता है, उस हेतु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य देह। बाकी जो तल लभ्यते दुख वदन्यता सुख, जिस तरह से दुख मिलेगा क्योंकि हमारे भाग्य का है तो मिलेगा, चाहे आप कितना ही प्रयत्न करो उससे बचने का मिलेगा, उसी तरह से सुख भी जो आपके भाग्य का है वो मिलेगा। उसको प्राप्त करने के लिए भी कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो भक्त होता है वो इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं रखता। उसके बाद है शुचिर, शुचि का मतलब होता है पवित्रता। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में दो बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है, इस प्रकार वह बाह्य तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। सबसे पहले तो शरीर की स्वच्छता होती है कि हम स्नान करें और पवित्र रहें, पवित्र वस्त्र पहने, ये तो बाहर की पवित्रता। और दूसरी पवित्रता मन की पवित्रता होती है। मन मलिन है जिसके कारण हम भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं। वास्तव में हृदय के अंदर अगर आसक्ति होनी चाहिए तो केवल भगवान की प्राप्ति की आसक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रेम की आसक्ति होनी चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि मन इतना मलिन है कि कृष्ण प्रेम की जो रियल जो प्रेम मन का स्वभाव है वो मेला हो गया है, गंदा हो गया है, तो इसीलिए महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय की गंदगी को साफ करना है। शुचि का मतलब होता है पवित्र, और शरीर को पवित्र किया जाता है स्नान करके और मन को पवित्र किया जाता है हरिनाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो हम बाहर और भीतर से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भक्त जो है ये दोनों पवित्रता करता है, शरीर भी उसका पवित्र होता है और उसका मन भी पवित्र होता है भगवान नाम के कारण। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, दक्ष का मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी भक्त इतना एक्सपर्ट होता है क्योंकि कृष्ण प्रभुपाद जी कहते क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। सार क्या है शास्त्रों का? दक्ष आजकल इन संसार में हम लोग किसको मानते हैं कि ये दक्ष है जो बहुत ज्यादा धन अर्जित कर दे, जो बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को ठगा सके, या फिर जो बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाना जानता हो, जो बहुत अच्छे तरीके से स्पीक करना जानता हो, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाना जानता हो, उसको हम बोलते हैं ये बहुत दक्ष है, दक्ष माना एक्सपर्ट। लेकिन वास्तविक दक्ष क्या होता है? जो कि जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ब्रह्मचर्य हूँ, वानप्रस्थ हूँ, गृहस्थ हूँ या सन्यासी हूँ, जो भी हूँ, तो उसके अनुसार मेरे कुछ कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों को पालन करके रिजल्ट क्या निकलना है, सार क्या है, मेरे जीवन का सार क्या है। जो ये सार जानता है ना कि धर्म सुनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुया नोत्पादयेद्रदिरतिम शम एव हि केवलम्। कि अगर हम पूरे धर्मों को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं तो केवल श्रम कर रहे हैं, जीवन सारा फिजूल में बिता रहे हैं। इसीलिए अतः पुंबिर द्विजय सृष्ट वर्णा सम विभागश सुनिश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषण। अगर मेरे सारे कर्तव्यों को पूरा करने के बाद भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो समझो कि मेरा धर्म जो है वो परफेक्ट है, फिर मैं परफेक्ट जा रहा हूँ। वर्णा दो श्रम एव ही केवलम, अगर इसको ये समझ में आता है तो वो दक्ष है। आजकल जो हम दक्ष समझ रहे हैं, एक्सपर्ट समझ रहे हैं, वो केवल अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन भगवान के आगे दक्ष वही है जो ये जानता है कि मेरे सारे कार्यकलापों का रिजल्ट क्या निकलना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं। अगर ये रिजल्ट निकल रहा है तो ठीक है, वरना तो मैं गलत जीवन जी रहा हूं। जिसको ये पता चल जाए वही दक्ष होता है। तो भगवान कहते हैं जो अनपेक्ष है यानी इच्छा नहीं रखता, जो पवित्र रहता है यानी मन से और शरीर से, और दूसरा जो एक्सपर्ट है यानी कि जो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझता है, सबसे सुंदर बात है उदासीन। उदासीन का मतलब एक होता है कि वो चिंता से मुक्त होता है। चिंता से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? जब उसके मन में वैराग्य होता है, जब वो उदासीन होता है, जब हम ये सोचते हैं कि ये वस्तु मेरी है तो उसके बारे में हमें, ये वस्तु या व्यक्ति जिसको हम अपना समझने लगते हैं तो उसके कारण हमें दुख होने लगता है, चिंता होने लगती है। लेकिन उदासीन है यदि किसी भी वस्तु के अंदर आसक्ति नहीं है तो फिर चिंता की आवश्यकता, चाहे कोई वस्तु हो या व्यक्ति, आसक्ति ही हमारे चिंता का कारण बनती है। अगर आसक्ति नहीं है तो चिंता नहीं है। इसीलिए भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कोई आसक्ति नहीं होती है, इसलिए उसे चिंता भी नहीं होती है। आगे है गतव्यथा। गतव्यथा मतलब सारे कष्टों से मुक्त, व्यथा कहते हैं मुक्ति को, तकलीफ को, और गत मतलब तकलीफ समाप्त हो जाए। वो तकलीफ कैसे समाप्त हो सकती है, दुख कैसे खत्म हो सकता है, व्यथा कैसे खत्म हो सकती है? जब आप सारी उपाधियों से मुक्त हो। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों से के आने पर वह मुक्त रहता है। उपाधि का क्या मतलब होता है? चाहे कोई भी आपका स्टेज है, चाहे आप बेटा हो, बेटी हो, बाप हो, माँ हो, पति हो, पत्नी हो, चाहे कोई भी, ये सब उपाधियां हैं। और इसके अलावा चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या फिर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी, कुछ भी हो, ये सब उपाधियां हैं। केवल आपके शरीर के कारण ये सब आपको मिली हैं। तो इन सब यानी आप किसी भी स्टेज में हो तो इसको जब कष्ट मिलता है, इस स्थिति को जब परेशानी होती है तो उसको कष्ट बोलते हैं। यानी ब्राह्मण हो तो भी आपके शरीर ही ब्राह्मण है ना। अगर क्षत्रिय हो तो आपका शरीर क्षत्रिय है, अगर ग्रस्त हो तो आपका शरीर ग्रस्त है, अगर आप बाप हो, बेटी हो, माँ हो, तो ये सब शरीर है। और कष्ट किसको मिल रहा है? शरीर को मिल रहा है। ये सब उपाधियां हैं। और वो भक्त क्या होता है? सर्व उपाधि विनुर्मुक्ता। जैसे महाप्रभु बताते हैं, न हम विप्र न च नरपति, न वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न च ग्रहपति, न वानस्थो यतुर्वा, किंत्वा प्रोधान निखिलः पूर्ण अमृतस्तब्देह गोपी भर्तु पदकमल दास दास दासानु दास। महाप्रभु कहते हैं ना हम विप्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, न च नरपति, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, न वैश्य, वेश भी नहीं हूँ, न शूद्रो, शूद्र भी नहीं हूँ, फिर क्या हो? फिर बोलते हैं, ना हम वर्णी न च ग्रहपति, ना मैं ब्रह्मचर्य हूँ, न ही ग्रस्त हूँ, न वानस्थो यतुर्वा, न ही वानस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, और न ही सन्यासी हूँ। तो बोलो फिर क्या हो? किंतु प्रोदा निखिल पूर्ण अमृतस्तब्देह, ये जो मेरा शरीर है ये तो सब उसकी उपाधियां हैं, वास्तव में जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि हृदय के अंदर जो आत्मा है वो मैं हूँ, और वो क्या है, गोपी भर्तु पद कमल दास दास दासानुदास। जो गोपियों के भर्ता भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरणों के दासों के दासों के दासों का दास हो, यानी जीवे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जब व्यक्ति अपने इस नित्य दास वाले स्वरूप को जान जाता है और जानता है कि मेरा संबंध केवल कृष्ण से है, ये सब तो उपाधियां हैं, जब तक शरीर है तब तक रहेगा, तो फिर वो गतव्यथा हो जाता है, यानी कोई भी उसको चिंता नहीं रहती है, सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है, सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं जब हम अपने वास्तविक अस्तित्व आत्म साक्षात्कार को के अंदर प्रवेश करते हैं। और उसके बाद भगवान कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभ समस्त प्रयत्नों से परित्यागी, त्याग करने वाला, मतलब जो शुद्ध भक्त होता है वो ऐसी किसी भी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो, आरंभ ही नहीं करता ऐसा कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए, वो प्रयास का आरंभ ही नहीं, सर्व आरंभ परित्यागी, वो किसी भी, वो बस ये देखता है कि ये वस्तु के लिए मैं कार्य करूंगा लेकिन इससे मेरी भक्ति में तो उन्नति होगी नहीं, फिर भी ये कार्य करने की क्या जरूरत है। यानी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात, उदाहरण बहुत अच्छा दिया, श्रील प्रभुपाद जी कहते शुद्ध भक्त कभी भी कोई ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरण क्या, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी मेहनत लगती है, वो उसका भक्त का ये इच्छा नहीं होती है कि मैं अपने लिए बहुत बहुत महल बनाऊं, अच्छे से घर बनाऊं, उसमें मैं आराम से अय्याशी के साथ जीऊं, तो ये मेहनत काफी लगती है, तो वो अतएव भक्त कभी भी ऐसे कार्यों में हाथ नहीं लगाता, ऐसे नहीं सोचता कि मुझे ऐसे कार्य करने चाहिए, अपने लिए बड़े बड़े घर बनाने चाहिए, ये बेडरूम हो, वो ड्राइंग रूम हो, ऐसे प्लानिंग करूं, वो प्लान करूं, ये सब इसके लिए वो प्रयास नहीं करता है जिससे उसकी भक्ति में प्रगति नहीं होती। वो सोचते हैं अभी मैं इतना टाइम इसमें लगाऊं, मेरी तो भक्ति में प्रगति होगी नहीं। जैसे हम वो कथा पढ़ते थे रोमश ऋषि की, रोमश ऋषि जो है ना, वो अपने लिए घर बनाते नहीं थे, अपने लिए घर उन्होंने नहीं बनाया था, और वो बाहर धूप होती थी किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जप करते थे। तो एक बार इंद्र ने उनसे बोला कि आप अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी क्यों नहीं बना देते हो, तो बोला जीना है बहुत कम दिन, क्या अभी घर बनाऊं फजीयत में फंसूं, घर बनाऊंगा तो क्या होगा, उसको मेंटेन करने के लिए सारे वस्तुएं भी चाहिए होंगी, घर बनाऊंगा तो फर्नीचर भी चाहिए होगा, फर्नीचर और उसके बाद घर में तो किचन भी होगी, किचन में बर्तन भी होंगे, बर्तन में फिर रसोई राशन जो है वो भी होगा, फिर रसोई बनाऊंगा, फिर बर्तन धोऊंगा, फिर वापस पकाऊंगा, तो इसी में मेरा तो दिन निकल जाएगा, घर बनाऊंगा तो सारा दिन इसी में चक्कर में खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं घर बनाता ही नहीं हूं। तो बोला फिर कब तक ऐसे रहोगे, तो उसने बोला जीना है चार दिन तो फिर ना ऐसे ही गुजर जाएंगे बगैर घर बनाने के। अच्छा इंद्र ने कहा अगर कम दिन जीना है तो कितना समय आपके पास, बोला ये मुझे आशीर्वाद मिला है कि जितने मेरे शरीर पर रोम हैं, उसके शरीर पर बहुत सारे रोम थे इसीलिए उनका नाम रोमश ऋषि रखा गया था, तो बोला इतने सारे रोम है जब समाप्त हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे तब मृत्यु होगी। बोला ये कब समाप्त होंगे ये पता है आपको, बोला हाँ ब्रह्मा जी का जब एक दिन गुजरता है ना, यानी 8,64,00,000,000 वर्ष के बाद मेरा एक ये बाल गिरता है, इस तरह से जब मेरे सारे बाल गिर जाएंगे ना तब मेरी मृत्यु होगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उनके पास इतना समय होता था फिर भी उनको लगता था कि भक्ति के लिए कम समय, और हम सोचते हैं आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, अभी तक हमारी माला तक सही नहीं हो रही है, किसी की चार माला हो रही है, किसी की छह माला हो रही है, 16 माला करने में 1.5 घंटा होता है, और अभी हम लोग ये सोच रहे हैं अभी तो जीवन पड़ा है ना कर लेंगे टाइम आएगा, अभी तो फिर भी इतना तो कर रहे हैं, दूसरे तो उतना भी नहीं कर रहे। दूसरों को देखना नहीं है, उनको देखना है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनको देखना है कि अब वो कितने आनंदित हैं। अभी जो नहीं कर रहे वो आज भी दुखी कल भी दुखी, हमें तो और भी आगे बढ़ना है ना। इसलिए जो भक्त होता है जो भौतिक कार्यकलाप होते हैं ना उनके लिए प्रयत्न नहीं करता, जैसे शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब हालांकि पहले ये सब बहुत बड़े बड़े राजाओं के पास काम करते थे, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जो थे वो राजा की मंत्री थे, महामंत्री, उनकी इतनी सारी सैलरी होती थी, वो वहां सब कुछ छोड़कर, भक्त को ये नहीं होता कि मैं बहुत सारे धन कमाऊं उसके बाद है ना मैं आनंद से जीऊं, ऐसा होता ही नहीं उसके जीवन का। भगवान बता रहे ये भगवान को जो प्रिय लगता है ना उसकी बात कही जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, वो सब धन दौलत मंत्री पद सब छोड़ के, आज देखिए मंत्री पद प्राप्त करने के लिए कितना क्या कुछ नहीं करते, सब कुछ करते हैं कि भाई हमें किसी तरह से मंत्री बन जाए हम लोग, लेकिन भगवान की भक्ति करनी शुरू की और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने वो मंत्री पद छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं, भगवान की पूजा स्थल जो लीला स्थली है उनकी खोज कर रहे हैं, शास्त्रों को लिख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे जीवन का मकसद ये भौतिक आनंद प्राप्त करना या भौतिक जीवन में प्रगति करना है ही नहीं। हमारे जीवन का मकसद है हम कैसे यस्यैव हेतु प्रियते व को विदो, जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये जो भक्त होते हैं वो इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी प्रयत्न नहीं करते, मिले तो मिले ना मिले तो ना मिले, उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करनी है। और भगवान कहते हैं जो सब कुछ मुझ पर छोड़ देता है, जो किसी भी वस्तु के लिए इच्छा नहीं करता, पवित्र रहता है, एक्सपर्ट है, जानता है शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, भौतिक वस्तुओं से उदासीन है और कभी भी कष्ट मतलब गतव्य था सारे कष्टों से मुक्त रहता है, सारे जो प्रयास हैं उनको कभी भी जो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जो प्रयास है उनको परित्यागी, उनको त्याग देता है। योमत भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे भगवान कहते हैं बहुत ही सुंदर और मेरा प्रिय श्लोक है, बहुत ही स्वीट शब्द है, भगवान के मुखारंग से निकले हुए हैं, मधु से मीठे, मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। शब्दार्थ यो न हृष्यति, यो मतलब जो, नामन कभी नहीं, हृष्यति मतलब हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न मतलब कभी नहीं, द्वेष्टि यानी शोक करता है, न शोचति, शोचति मतलब पछताता नहीं है, न कांक्षति मतलब इच्छा नहीं रखता, शुभ अशुभ यानी शुभ तथा अशुभ का परित्यागी, त्याग करने वाला है, भक्तिमान्यः समे प्रियः, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अनुवाद, भगवान कहते हैं जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना ही हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य के प्रति की पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है। वह अपने किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने के लिए तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है। श्रील प्रभुपाद की जय। अत्यंत ही सुंदर श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो न हृष्यति। हृष्यति लोग कब खुश कब होते हैं? जब उनको भौतिक लाभ प्राप्त होता है, है ना। किसी को यदि 50 लाख की लॉटरी लगे कितना ज्यादा खुश हो जाए। किसी को अगर कोई धन मिल जाए या फिर कुछ और भौतिक वस्तु कोई मिल जाए तो उसको बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जो भक्त होता है इन भौतिक वस्तुओं के प्राप्त करने से हर्षित नहीं होता। न द्वेष्टि। द्वेष्टि का मतलब होता है कि जब उसको हानि होती है, कोई बहुत ज्यादा उसका लॉस हो जाता है तो दुखी नहीं होता है। मतलब ना वो बहुत ज्यादा सुखी होता है भौतिक प्राप्ति करने के बाद, और ना ही और जो उसके पास है अगर उसके उससे चला जाता है तो द्वेष्ट भी नहीं करता, उसको दुख भी ज्यादा नहीं होता। न शोचती। शोचती का मतलब होता है पछताता नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि वो उत्सुक नहीं होता है मुझे बेटा मिल जाए, मुझे शिष्य मिल जाए, मेरे इतने सारे अनुयायी हों, वो इसके लिए उत्सुक भी नहीं होता। और अगर कोई वस्तु उसको बहुत प्यारी लग रही हो, मतलब पहले से उसकी प्यारी वस्तु हो, उसके जाने पर भी वो पछताता नहीं, शोक नहीं करता है कि अरे ये मेरी कितनी अच्छी चीज थी या कितना अच्छा था, ये चला गया उसके बगैर अब आनंद, मतलब दुख नहीं होता है। देखो वैष्णव से बिछड़ना एक अलग बात होती है। भक्तों को दुख होता है जब वो किसी वैष्णव से बिछड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वैष्णवों का संग प्राप्त करके जो है ना हम भक्ति में बहुत जल्दी से उन्नति करते हैं। तो यदि किसी का शिक्षा गुरु उनसे दूर हो जाता है या ऐसे शुद्ध भक्तों का संग उससे, तो बहुत दुख होता है। लेकिन भौतिक वस्तुएं जो हैं या भौतिक व्यक्तियों के प्राप्त होने से उन्हें इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती। और अगर कोई चले जाते हैं तो वो ना शोचती ना कांक्षती और ना इच्छा करता है, ऐसे भी नहीं सोचता है ये वापस से मुझे प्राप्त हो जाए, इसी मतलब मुझे ये मिल जाना चाहिए, ये मिल जाएगा तो मैं बहुत अच्छी भक्ति करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो मुझे ये, जो उसकी सिचुएशन है नाउ एज इट इज द प्रेजेंट मोमेंट में, ये जो बताया गया है ना कि जो ना हृष्यति ना द्वेष्टि, वो ना दुखी होता है ना सुखी होता है, ना शोक करता है ना चिंता करता है ना आकांक्षा करता है, जो है वो मेरे लिए कल्याणकारक है। हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर लॉर्ड। बस मुझे ये बताओ कि मेरे पास अभी जो कुछ है वो मैं कैसे आपकी सेवा में लगाऊं, जो नहीं है वो उसके लिए मैं दुखी नहीं हूं, और जो मिलकर मुझे छोड़ के चला गया उसके लिए भी मैं दुखी नहीं हूं। अभी जो प्रेजेंट जो मोमेंट है उसको मैं कैसे सेवा में लगाऊं, उसका भक्त का इंटेंशन सिर्फ इतना होता है कि मैं कैसे कृष्ण को खुश करूं अपनी इस मौजूदा हालत में, अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो कुछ भी है। भगवान को भक्ति यही कहता है, आपने जो दिया उसके लिए भी धन्यवाद, आपने जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, आपने जो देकर ले लिया उसके लिए भी धन्यवाद, और आपने जो कभी नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, और जो आप देना चाहते हो उसके लिए भी धन्यवाद, और जो आप नहीं देना चाहते हो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू कृष्णा फॉर नाउ एज इट इज, जैसा भी है उस सबके लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझ पर कोई कृपा करनी है ना भगवान, तो सिर्फ इतनी करो कि जो मेरे पास है एज जिस समय में, एज इट इज सरकमटेंसेस में, हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर लॉर्ड। मैं इस प्रेजेंट वर्तमान समय को आपकी सेवा और आपके आनंद के लिए कैसे यूज करूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, तो फिर जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए बात सोचता है तो फिर चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, वो उसके लिए ना शोक करता है, ना चिंता करता है, ना हर्षित होता है, ना दुष्ट होता है, बस वो क्या करता है, शुभा शुभ परित्यागी, चाहे शुभ हो या अशुभ हो या पाप कर्म हो, उनसे सदैव परे रहता है। वो खाली क्या करता है, उसका जो कार्य होता है ना वो शुभ अशुभ नहीं होता है, उसका कार्य भक्ति होता है, यानी सारे गुणों से ऊपर होता है। और ऐसे भक्त को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कार्य करता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, तो वो सारे कर्मों के बंधन से भी छूट जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब भगवान के लिए मुंबई में जब मंदिर बना रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने कितना बड़ी बड़ी विपत्तियां, और भी अलग अलग कंट्रीज में श्रील प्रभुपाद जी ने जब टेम्पल्स बनाए, उनकी योजना, उसके लिए बड़ी बड़ी विपत्तियों को स्वीकार करते थे, लेकिन अपने लिए कभी परेशान नहीं होते थे। तो जो बड़ी बड़ी विपत्तियों को सहने के लिए तैयार है, भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं होता, बस कुछ भी हो जाए मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना। वरना 70 साल की उम्र में कौन जाता है अमेरिका जाकर प्रचार करने के लिए, वृंदावन में बैठे होते सुख से, लेकिन ना आयु बाधा बनती है, ना ही हमारे जो धन की कमी है वो बाधा बनती है, ना ही कोई सर्कमटेंसेस बाधा बनते हैं। बाधा सिर्फ ये होती है भक्ति करने में और भक्ति ना करने में, बीच में सिर्फ एक ही बाधा होती है कि हमारी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती है। हमारी श्रद्धा हो, हमारा निश्चय पक्का हो, फिर संसार की कोई भी ताकत जो है वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ऐसा श्रद्धावान होता है, जो केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, शुभा शुभ परित्यागी, बाकी सब कुछ छोड़ देता है, भक्तिमान यह समय प्रिय, ऐसे भक्त को मैं बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना ना भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्णा।